एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी के एक और अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी पहली मेजबान
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो काफी प्रभावशाली रही है।
हाँ, निवेश की दुनिया से लेकर पर्सनल ग्रोथ तक, है ना?
बिल्कुल। किताब है प्रिंसिपल्स, लेखक है रे डालियो।
और ये सिर्फ मतलब अच्छी सलाहों की लिस्ट जैसी नहीं है, ये तो जीवन और काम में सफल होने का एक पूरा सोचा समझा तरीका है।
सही कहा। और आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है,
हाँ,
हर मोड़ पर फैसले लेने पड़ते हैं।
हाँ, तो एक भरोसेमंद सिस्टम होना, एक तरीका होना कितना जरूरी हो जाता है, है ना?
बिल्कुल। हम अक्सर भावनाओं में बहकर या बस सुनी सुनाई बातों पर फैसले ले लेते हैं।
ये किताब सिखाती है कि कैसे ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा लॉजिकल तरीके से सोचा जाए। ये सवाल पूछती है, क्या हम अपनी गलतियों से सच में सीख रहे हैं? क्या मुश्किल हालात से निपटने का कोई तरीका है हमारे पास?
तो ये आज के जमाने में बहुत जरूरी बात है। चलिए फिर इस दिलचस्प किताब की गहराइयों में उतरते हैं।
जरूर।
तो पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात हो जाए। रे डेलियो।
हाँ, रे डेलियो कोई आम लेखक या क्या कहते हैं, गुरु नहीं है। वो एक सेल्फ मेड अमेरिकी अरबपति निवेशक हैं।
और उन्होंने ब्रिज वाटर एसोसिएट्स की स्थापना की।
जी हाँ, जो एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड था, करीब 160 बिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति संभालता था।
सोचिए जरा, और ये शुरुआत उन्होंने कहां से की थी?
यही तो कमाल की बात है, 1975 में अपने दो कमरों वाले अपार्टमेंट से।
वाह, मतलब जमीन से उठकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना।
बिल्कुल, और इसीलिए उनकी बातों में वजन है। ये किताब कोई किताबी ज्ञान नहीं है।
ये थियोरी नहीं है।
नहीं, ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें डेलियो ने ब्रिज वाटर को बनाते और चलाते हुए, मतलब खुद ठोकरे खाकर गलतियां करके सीखा और सुधारा है।
तो ये उनके दशकों के अनुभव का निचोड़ है कह सकते हैं।
बिल्कुल, असल दुनिया में आजमाई हुई बातें हैं। वो खुद बताते हैं कि 80 के दशक की शुरुआत में उनकी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी गलत हो गई थी।
अच्छा।
हाँ, और उनकी कंपनी लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। वो इसे द अबिस यानी गर्त कहते हैं।
ओह, ये तो काफी बड़ा झटका रहा होगा।
बहुत बड़ा, लेकिन उसी दर्दनाक अनुभव ने उन्हें सिखाया कि सिर्फ सही होना काफी नहीं है, जरूरी है सच्चाई का पता लगाना, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो।
मतलब अपनी ईगो को साइड में रखना।
एग्जैक्टली, और इसी सोच ने उन्हें ये सिद्धांत लिखने और फिर ब्रिज वाटर की वो अनोखी संस्कृति बनाने के लिए प्रेरित किया।
तो ये किताब असल में है क्या चीज, मतलब किस बारे में है?
इसे आप जीवन और काम के लिए रे डेलियो का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम।
हाँ, इसमें उनकी अपनी कहानी भी है, मैनेजमेंट के सबक भी हैं और जिंदगी जीने का एक नजरिया, एक फिलॉसफी भी है। काफी कुछ है इसमें।
और इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि देखो मैंने क्या किया।
नहीं नहीं बल्कि उन बुनियादी सिद्धांतों को शेयर करना है जिन्हें वो अपनी सफलता की वजह मानते हैं। और वो ये नहीं कहते कि बस आंख बंद करके इन्हें फॉलो करो।
अच्छा।
वो चाहते हैं कि पढ़ने वाले इन्हें समझें, परखें और फिर अपने लक्ष्यों और अपने मूल्यों के हिसाब से इन्हें अपनाएं या ढालें। ये एक टूल किट जैसा है।
ये बढ़िया बात है, मतलब अपने लिए इसे कस्टमाइज करो।
हाँ, किताब शुरू होती है डेलियो की अपनी कहानी से। सेक्शन का नाम है वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम,
जिसमें वो अपनी सफलताओं से ज्यादा अपनी असफलताओं पर बात करते हैं, है ना?
जी हाँ, खासकर 1982 की वो घटना जिसने उन्हें विनम्रता सिखाई और ये एहसास दिलाया कि मैं गलत हो सकता हूँ, ये सोचना कितना जरूरी है। और यहीं से किताब का असली मर्म, मतलब जो उसका कोर है, वो शुरू होता है। इसके बाद ये दो मुख्य हिस्सों में बढ़ जाती है।
कौन कौन से?
लाइफ प्रिंसिपल्स यानी जीवन के सिद्धांत और वर्क प्रिंसिपल्स यानी काम के सिद्धांत।
अच्छा, तो जीवन के सिद्धांत पहले।
हाँ, ये इस बारे में है कि कोई भी इंसान, मतलब हम और आप, हकीकत का सामना करके अपनी सोच की रुकावटों को समझकर,
जैसे अहंकार या हमारे जो बायस होते हैं।
बिल्कुल, उनको समझकर और एक व्यवस्थित तरीके से फैसले लेकर कैसे बेहतर बन सकता है।
और फिर
काम के सिद्धांत इन्हीं आइडियाज को एक संगठन, एक कंपनी के माहौल में लागू करते हैं। यहाँ डेलियो ब्रिजवाटर की वो मशहूर आइडिया मेरिटोक्रेसी के बारे में बताते हैं।
आइडिया मेरिटोक्रेसी सुनने में थोड़ा भारी लगता है ये शब्द।
हाँ, पर इसका मतलब सीधा सा है, एक ऐसा माहौल जहाँ विचारों की परख इस आधार पर हो कि वो कितने अच्छे हैं, कितने लॉजिकल हैं,
न कि इस आधार पर कि वो किस बड़े साहब या मैडम से आ रहे हैं।
बिल्कुल। इसके लिए वो रैडिकल ट्रूथ यानी कट्टर सच्चाई और रैडिकल ट्रांसपेरेंसी यानी कट्टर पारदर्शिता जैसे तरीकों पर जोर देते हैं।
कट्टर सच्चाई और कट्टर पारदर्शिता, ये सुनने में ही थोड़े डरावने से लगते हैं।
हाँ, लगते हैं। चलिए इन हिस्सों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं।
हाँ, करते हैं। तो पहला भाग तो उनकी कहानी थी जिसने इन सिद्धांतों की नींव रखी, वो गर्त वाला अनुभव।
जी, भाग वन, वेर आई एम कमिंग फ्रॉम, मेरी यात्रा। वो 1982 का अनुभव बहुत जरूरी है, जब उनकी भविष्यवाणी गलत हुई और सब कुछ दाव पर लग गया।
हाँ,
वहीं उन्होंने सीखा कि सफलता का राज हमेशा सही होना नहीं है, बल्कि लगातार सीखना और सुधारना है, खासकर अपनी गलतियों से।
और तभी उन्होंने ये सिद्धांत लिखने शुरू किए ताकि दोबारा वही गलती ना हो।
एग्जैक्टली, ताकि भविष्य में अहंकार उन्हें फिर से उसी गड्ढे में ना धकेल दे।
समझ गए। अब आते हैं भाग दो, लाइफ प्रिंसिपल्स, जीवन के सिद्धांत पर। ये किताब का कह सकते हैं दार्शनिक दिर है।
हाँ, कह सकते हैं, और ये सिद्धांत किसी पर भी लागू होते हैं। पहला और सबसे बुनियादी है, सच्चाई को स्वीकार करें और उसका सामना करें।
Embrace reality and deal with it.
इसे वो हाइपर रियलिज्म कहते हैं, है ना?
जी,
मतलब दुनिया को वैसे देखो जैसी वो है, न कि जैसी आप चाहते हो कि वो हो। यहीं पर उनका वो मशहूर फॉर्मूला आता है।
हाँ, वो दर्द वाला।
जी हाँ, दर्द प्लस चिंतन इज इक्वल टू प्रगति।
पेन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू प्रोग्रेस।
ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, दर्द प्लस चिंतन इज इक्वल टू प्रगति, पर असल में इसे करना
कितना मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हमें दर्द होता है या हम फेल होते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उससे भागना या उसे इग्नोर करना।
हाँ, या किसी और पे इल्जाम लगाना।
बिल्कुल, डालियो कहते हैं, नहीं रुको, उस दर्द को महसूस करो और सोचो ये क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ या सकती हूँ।
और यही चिंतन, यही सोच विचार प्रगति का रास्ता खोलता है।
बिल्कुल, जैसे उन्होंने अपने 1982 के अनुभव के बाद किया।
और इसी सोच से उनका दूसरा सिद्धांत निकलता है, वो 5 स्टेप वाली प्रक्रिया।
हाँ, जीवन में जो चाहें उसे पाने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस का उपयोग करें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है।
क्या है वो 5 स्टेप्स?
पहला, स्पष्ट लक्ष्य रखें। आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं,
एकदम क्लियर होना चाहिए।
ठीक है। दूसरा, समस्याओं को पहचानें। उन लक्ष्यों के रास्ते में क्या रुकावटें आ रही हैं, उन्हें अनदेखा न करें। तीसरा, समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाएं। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि असली जड़ क्या है, गहराई में जाएं।
ओके, रूट कॉज एनालिसिस।
हाँ
हाँ।
चौथा,
हाँ।
एक योजना बनाएं।
हाँ।
उन मूल कारणों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। और पांचवा, सबसे जरूरी, योजना को पूरा करें। पूरी लगन और अनुशासन से उस योजना पर काम करें।
और ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है।
बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। आप लक्ष्य पाते हैं, फिर नया लक्ष्य बनाते हैं, फिर समस्याएं आती हैं और आप सीखते जाते हैं, बेहतर होते जाते हैं।
ये तो मतलब लक्ष्य पाने का एक इंजीनियरिंग जैसा तरीका लग रहा है।
हाँ हाँ, कह सकते हैं।
तीसरा सिद्धांत था, कट्टर रूप से खुले विचारों वाले बने।
बी रैडिकली ओपन माइंडेड।
इसका क्या मतलब है? क्या सबकी हाँ में हाँ मिलानी है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है ये समझना कि आप सब कुछ नहीं जानते और आप गलत हो सकते हैं।
अच्छा,
इसलिए आपको एक्टिवली उन समझदार लोगों को सुनना चाहिए जो आपसे असहमत हैं। उनसे बहस करके जीतने की कोशिश करने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं।
क्या उनके पास कोई ऐसी जानकारी या नजरिया है जो मेरे पास नहीं है?
एग्जैक्टली, लक्ष्य ये साबित करना नहीं है कि आप सही हैं, बल्कि ये पता लगाना है कि सच्चाई क्या है, और ये हमारे ईगो के लिए बहुत मुश्किल होता है।
हाँ, ये तो है। अच्छा, चौथा सिद्धांत थोड़ा अलग था। समझें कि लोग बहुत अलग तरह से बने होते हैं।
अंडरस्टैंड दैट पीपल आर वायर्ड वेरी डिफरेंटली।
जी,
डेलियो कहते हैं कि हर किसी के सोचने का तरीका, उनकी ताकतें, उनकी कमजोरियां अलग होती हैं। जैसे कुछ लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ ज्यादा लॉजिकल।
कोई बड़ी तस्वीर देखता है, कोई छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देता है।
हाँ, और ये समझना जरूरी है, क्योंकि इससे आप बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, बेहतर टीमें बना सकते हैं।
अच्छा, कैसे?
अगर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति किस चीज में अच्छा है या उसकी सोचने की स्टाइल क्या है, डेलियो इसके लिए MBTI जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट इस्तेमाल करने की सलाह भी देते हैं। तो आप उसके साथ ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। आप सही काम के लिए सही व्यक्ति को चुन सकते हैं, मतलब सही भूमिका दे सकते हैं।
तो विविधता एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ताकत बन जाती है।
बिल्कुल।
और पांचवा जीवन सिद्धांत, प्रभावी ढंग से निर्णय लेना सीखें, लर्न हाउ टू मेक डिसीजंस इफेक्टिवली। इसमें वो एक अनोखी बात कहते हैं, विश्वसनीयता भारत निर्णय लेना, बिलीवेबिलिटी वेटेड डिसीजन मेकिंग। ये क्या है?
इसका मतलब है कि जब आप कोई फैसला ले रहे हों तो हर किसी की राय को बराबर वजन ना दें।
अच्छा।
उन लोगों की राय को ज्यादा महत्व दें जिनका उस खास विषय में ज्ञान है, अनुभव है और जिन्होंने पहले उस फील्ड में सफलता दिखाई है,
और जो अपनी बात के पीछे का तर्क भी साफ साफ बता सकें।
जी हाँ, जैसे अगर आपको निवेश पर सलाह चाहिए तो आप किसी अनुभवी सफल निवेशक की बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, है ना कि किसी ऐसे दोस्त की जिसे कोई तजुर्बा नहीं है।
हाँ, ये तो कॉमन सेंस है
लगता है, पर हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं। हम शायद उसकी बात मान लेते हैं जो ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलता है या जो हमारा करीबी है।
बात तो सही है। तो ये थे जीवन के सिद्धांत। अब देखते हैं कि ये काम की दुनिया में, मतलब एक कंपनी में कैसे लागू होते हैं। भाग 3, वर्क प्रिंसिपल्स, काम के सिद्धांत। और यहाँ का मेन आइडिया है आइडिया मेरिटोक्रेसी बनाना।
हाँ, और इसे बनाने के लिए डालियो जीवन सिद्धांतों को ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ले जाते हैं। सबसे पहले आता है कट्टर सच्चाई और कट्टर पारदर्शिता।
हाँ, ये ब्रिजवाटर की संस्कृति का शायद सबसे चर्चित और विवादास्पद पहलू है ना?
जी हाँ, कट्टर सच्चाई और पारदर्शिता।
सुनने में ही डर लगता है। इसका मतलब क्या है कि हर कोई किसी के भी बारे में कुछ भी कभी भी बोल सकता है? कैसे ऑफिस का माहौल खराब नहीं होगा?
ये एक आम चिंता है और वैलिड भी है, लेकिन डालियो का तर्क है कि ये पारदर्शिता ऑफिस पॉलिटिक्स को खत्म करने और सबसे अच्छे विचारों को सामने लाने के लिए जरूरी है।
कैसे?
ब्रिजवाटर में लोग एक सारी बैठकें रिकॉर्ड की जाती हैं और ज्यादातर कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती हैं। फीडबैक अक्सर तुरंत और सीधे दिया जाता है, भले ही वो आलोचनात्मक हो।
ओह,
लेकिन इसके पीछे का इरादा पर्सनल अटैक करना नहीं होता, मकसद होता है सुधार करना और सच्चाई तक पहुंचना।
तो ये पारदर्शिता तभी काम कर सकती है जब लोगों के बीच भरोसा हो और एक साझा मकसद हो, मतलब सार्थक काम और सार्थक रिश्ते हों।
बिल्कुल, लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि आलोचना उनकी भलाई के लिए है, उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं।
और इसी से जुड़ा है उनका एक और सिद्धांत, गलतियां करना ठीक है लेकिन उनसे न सीखना अस्वीकार्य है।
जी, ओके टू मेक मिस्टेक्स, अनएक्सेप्टेबल नॉट टू लर्न फ्रॉम देम।
हाँ
अगर माहौल पूरी तरह पारदर्शी है तो गलतियां थिपेंगी नहीं।
हाँ वो तो सामने आ जाएंगी।
लेकिन डालियो कहते हैं कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। असली प्रॉब्लम तब है जब आप एक ही गलती बार बार करते हैं।
डालियो संगठन को एक मशीन की तरह देखने की बात करते हैं। ये सुनने में थोड़ा ठंडा, मतलब इम्पर्सनल नहीं लगता, जैसे लोग मशीन के पुर्जे हों?
हाँ, ये शब्द थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन उनका मतलब ये है कि एक संगठन एक सिस्टम की तरह है जिसमें लोग, पीपल और संस्कृति, कल्चर मिलकर नतीजे, आउटकम्स देते हैं।
अच्छा।
एक मैनेजर का काम है इस मशीन को समझना, उसकी प्रॉब्लम्स का पता लगाना, जैसे कोई प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर रहा या किसी टीम में तालमेल नहीं है, और फिर उसे लगातार बेहतर बनाने के लिए डिजाइन में बदलाव करना।
तो ये समस्याओं को पर्सनल या इमोशनल तरीके से लेने के बजाय ऑब्जेक्टिव तरीके से हल करने का नजरिया है।
जी, इंजीनियरिंग माइंडसेट कह सकते हैं।
और इस पारदर्शिता और मूल्यांकन को लागू करने के लिए वो कुछ टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे डॉट कलेक्टर ऐप।
हाँ, ये काफी अनोखा है। मीटिंग के दौरान लोग रियल टाइम में एक दूसरे को अलग अलग पैमानों पर रेट करते हैं।
जैसे
क्या वो लॉजिकल थे, क्या उन्होंने खुले दिमाग से बात सुनी, क्या उन्होंने अपनी बात ठीक से रखी।
ओह,
और फिर इस डेटा का क्या होता है, ये डेटा इकट्ठा होकर लोगों का विश्वसनीयता स्कोर बनाने में मदद करता है। ये दिखाता है कि कौन किस क्षेत्र में ज्यादा भरोसेमंद है, किसकी बात को ज्यादा वजन देना चाहिए।
ये सब उसी आइडिया मेरिटोक्रेसी बनाने के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है।
हाँ, जहां फैसले डेटा और तर्क के आधार पर हों, ना कि पद या आवाज की बुलंदी पर।
तो इस पूरी किताब से, इतने सारे सिद्धांतों से, कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या निकलते हैं? अगर हमें कुछ निचोड़ निकालना हो तो वो क्या होगा?
मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक वही है, दर्द प्लस चिंतन बराबर प्रगति। जीवन में मुश्किलें आएंगी, हम फेल होंगे, ये तय है।
हाँ,
लेकिन उनसे भागने के बजाय रुककर सोचना कि इससे क्या सीखा जा सकता है, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। दर्द एक सिग्नल है कि कुछ बदलने की जरूरत है।
सही कहा। दूसरा, व्यवस्थित सोच बनाम बस रिएक्ट करना, मतलब भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय एक प्रोसेस अपनाना।
हाँ, जैसे वो 5-स्टेप प्रोसेस, अपने लक्ष्यों को क्लियर करना, समस्याओं की जड़ तक जाना, योजना बनाना और फिर उस पर काम करना।
ये जीवन को ज्यादा कंट्रोल में लाता है ना, अपने फैसलों को लिखना भी इसमें मदद करता है शायद।
बहुत मदद करता है, ताकि आप बाद में देख सकें कि क्या सही रहा और क्या गलत।
तीसरा, कट्टर सच्चाई, पारदर्शिता और खुले विचार, ये सिर्फ काम की जगह के लिए नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये निजी रिश्तों में भी उतने ही जरूरी हैं। अहंकार को परे रखकर दूसरों को सुनना, अपनी गलतियों को मानना,
मुश्किल बातचीत से कतराना नहीं।
हाँ, ये सब हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। भारत में हम अक्सर देखते हैं, यू नो, पद या उम्र के कारण लोग खुलकर अपनी असहमति जताने से हिचकते हैं।
हाँ, ये होता है।
डिलियो का मॉडल कहता है कि ये हिचक संगठन और व्यक्ति दोनों के लिए नुकसानदेह है।
चौथा थीम, जीवन और काम को एक मशीन की तरह देखना, ये थोड़ा अजीब लग सकता है।
हाँ, जैसा हमने कहा, पर ये हमें समस्याओं को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने में मदद करता है। अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाए तो हम इमोशनल नहीं होते हैं ना, हम उसे ठीक करवाते हैं।
हाँ,
डेलियो कहते हैं कि जीवन की चुनौतियों के साथ भी ऐसा ही इंजीनियरिंग वाला रवैया अपना सकते हैं। प्रॉब्लम को समझो, डायग्नोस करो और हल निकालो।
और आखिर में ये सब मुमकिन तभी होता है जब हम अपने अहंकार और भावनात्मक बाधाओं पर काबू पाना सीखते हैं।
बिल्कुल, मैं सही हूं कि जिद छोड़कर सच क्या है इसकी खोज करना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, यही विनम्रता हमें सीखने और बढ़ने देती है।
किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो वाकई दिमाग में बैठ जाती हैं। एक तो वही जो हम बार बार कह रहे हैं, दर्द प्लस चिंतन बराबर प्रगति, पेन प्लस रिफ्लेक्शन बराबर प्रोग्रेस।
हाँ, ये तो मूल मंत्र है, हर चुनौती एक सबक है अगर हम रुक कर सोचें।
दूसरी पंक्ति, सच्चाई या ज्यादा सटीक रूप से कहें तो वास्तविकता की सही समझ किसी भी अच्छे परिणाम की अनिवार्य नींव है।
ये उनके हाइपर रियलिज्म का सार है। आप समस्याओं को तभी हल कर सकते हैं जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं जैसे वो हैं। मीठे झूठ से कड़वी सच्चाई बेहतर है,
क्योंकि तभी आप सुधार कर सकते हैं।
एग्जैक्टली।
और काम के संदर्भ में एक आइडिया मेरिटोक्रेसी बनाएं जिसमें सबसे अच्छे विचार जीतें।
सोचिए एक ऐसी टीम या कंपनी की जहां पद या पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि सबसे लॉजिकल और असरदार आइडिया मायने रखता हो। ये न केवल बेहतर नतीजे देगा, बल्कि लोगों को ज्यादा एम्पावर्ड भी महसूस कराएगा।
हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और व्यक्तिगत स्तर पर कट्टर खुले विचारों का मतलब है कि आप वास्तव में इस बात से चिंतित हैं कि शायद आप अपने विकल्पों को सही ढंग से नहीं देख पा रहे हैं।
हाँ, ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये एक्टिवली ये सोचना है कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं सोच रहा।
अपनी सोच पर ही सवाल उठाना,
हाँ,
ये मानना कि दूसरों के पास मुझसे बेहतर जवाब हो सकता है, ये सच्ची बौद्धिक विनम्रता है।
ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, सिद्धांत बहुत पावरफुल हैं, लेकिन हम जैसे आम लोग
जी बिल्कुल,
जो हेज फंड मैनेजर नहीं हैं,
हाँ,
इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल तरीका?
बढ़िया सवाल है, और बिल्कुल उतार सकते हैं। शुरुआत 5 चरणीय प्रक्रिया से कर सकते हैं। कोई भी छोटा या बड़ा लक्ष्य लें,
जैसे
जैसे वजन कम करना, या कोई नई स्किल सीखना, या बस रोज सुबह जल्दी उठना। मान लीजिए वजन कम करना है।
ठीक है।
एक लक्ष्य, वजन 5 किलो कम करना।
दो,
समस्या, शाम को जंक फूड खाने की आदत, एक्सरसाइज नहीं करना। 3, मूल कारण, शायद स्ट्रेस ईटिंग या सुबह आलस। 4, योजना, हेल्दी स्नैक्स रखना, सुबह 15 मिनट वॉक का टारगेट। 5, लागू करना, रोज ट्रैक करना कि किया या नहीं।
ये तो किसी भी लक्ष्य पर लागू हो सकता है।
बिल्कुल।
और रिश्तों में
कट्टर सच्चाई वहां कैसे काम करेगी बिना झगड़ा करवाए?
हाँ, वहां थोड़ा संभल कर, शायद इसे ईमानदार लेकिन सम्मानजनक संवाद की तरह देखना चाहिए। जब कोई करीबी आलोचना करे तो तुरंत डिफेंसिव होने के बजाय कहें, ओके, मुझे और बताओ, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कोशिश करें कि उनकी बात में छिपी सच्चाई को समझें।
अच्छा,
और आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए
अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें।
शायद कोई पर्सनालिटी टेस्ट लें या भरोसेमंद दोस्तों से फीडबैक मांगे और उनकी बात खुले दिमाग से सुने।
हाँ, सुनने वाला हिस्सा जरूरी है।
और एक निर्णय डायरी बनाना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। जब कोई बड़ा फैसला लें तो लिखें कि आपने क्या सोचा, क्यों सोचा, बाद में देखें कि नतीजा क्या निकला। इससे आप अपनी डिसीजन मेकिंग सुधार सकते हैं।
और दफ्तर में छोटे लेवल पर क्या कर सकते हैं?
अगर आप लीडर हैं तो मीटिंग में सबकी राय सुने, लेकिन उस व्यक्ति की बात को ज्यादा वजन दें जिसके पास उस विषय का अनुभव है। बिलीवेबिलिटी वेटिंग, फीडबैक देने का एक सुरक्षित माहौल बनाए।
और अगर कर्मचारी हैं
तो सोच समझकर असहमति जता सकते हैं। इसे पर्सनल न बनाकर टीम के लक्ष्य से जोड़ें, जैसे क्या हमने इस प्लान के इस रिस्क के बारे में सोचा है और खुद भी एक्टिवली फीडबैक मांगे, मैं इस प्रोजेक्ट में और बेहतर कैसे कर सकती थी।
तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए नहीं है, हम सब अपनी जिंदगी को ज्यादा असरदार और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि सफलता कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, इसे काफी हद तक इंजीनियर किया जा सकता है। अगर आप जीवन को एक सिस्टम की तरह देखें, अपनी गलतियों को डेटा की तरह इस्तेमाल करें और स्पष्ट सिद्धांतों पर चलें, तो आप लगातार बेहतर बन सकते हैं। ये किस्मत से ज्यादा प्रोसेस की बात है।
बिल्कुल, ये किताब आपको अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनने के लिए प्रेरित करती है, ना कि सिर्फ एक पैसेंजर। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपनी मशीन के डिजाइनर हैं और हम इसे लगातार सुधार सकते हैं। ये सोचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है।
हाँ, ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं बल्कि दुनिया को देखने और उसमें काम करने का एक पूरा फ्रेमवर्क है।
और शायद सबसे बड़ा सवाल जो ये किताब हमारे लिए छोड़ जाती है वो ये है कि क्या हम सच में इतने बहादुर हैं कि कट्टर सच्चाई और पारदर्शिता को अपना सकें अपने काम में, अपने रिश्तों में और सबसे जरूरी खुद के साथ।
हाँ, ये सोचने लायक बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।